ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 15 पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर भाव है इसमें। क्वचिदासद्य गृहं दाववत् प्रियार्थ विधुरं असुखोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदं उपगच्छति। श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। क्वचित कभी कभी, आसाद्य अनुभव करके, गृहम गृहस्थाश्रम की, दाववत दावाग्नितुल्य, प्रियार्थ विधुरम किसी लाभप्रद प्रयोजन के बिना, असुख उदरकम अधिकाधिक दुखी प्रतिफलित होता है, शोकाग्निना शोक की अग्नि से, दह्यमान संतप्त होकर, भृशम अत्यधिक, निर्वेदम निराशा, उपगच्छते प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस संसार में गृहस्थाश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझा जाता है। पारिवारिक जीवन में चिंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थाश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि में संतप्त रहता है, अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वो अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वो कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म न करने के कारण ही वो कष्ट का भागी बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, गुरुवास्तक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गान है, संसार दावा ननलीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। यह सांसारिक जीवन सही अर्थों में दावानल के सदृश है। जंगल की यह अग्नि किसी के लगाए बिना ही लगती है। इसी प्रकार इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जीवन की अग्नि में फंस जाता है तो वो अपने को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वो चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिक कष्ट भोगता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। तो श्रील श्रीमद् भागवतम एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें द्वादश स्कंद समन्वित है, द्वादश स्कंद है, बारह स्कंद, तो ये है पांचवा स्कंद। इसमें स्थान का वर्णन किया गया, स्थान अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये पांचवा स्कंद है, ये स्थान का वर्णन। स्थान मतलब ऊर्ध्वलोक, अधलोक और मध्यलोक का वर्णन, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल का स्थानों का वर्णन हुआ है। तो इस श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। जैसे द्वादश अंग होते हैं मनुष्य का, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वादश अंग है। तो श्रीमद् भागवतम ये पंचम स्कंध को नाभि कहा गया, पंचम स्कंध को भगवान के नाभि कहा गया। श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी की महिमा करते हुए वर्णन करते, संसारिणम ज स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम, ज स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीप मति तितिर सतम तमोंधम, संसारिणम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यस सुनु उपयामे गुरु मुनिनाम। ऐसे गुरु, गुरु के गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं संसारिणाम करुणया आह, जो संसारी प्राणियों के लिए करुणा करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम, ये पुराण जो रहस्य रूप जो पुराण, इसका वर्णन हमारे गुरु का गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया। किस लिए किया? संसारिणाम करुणया आह, संसारी प्राणी के करुणा करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। अध्यात्म दीपम अति तितिर सतम तमोंधम, जो तमोंध से अति तितिर सतम उत्तीर्ण होना चाहते हैं, ज स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम, श्रुति सार वेदों का सार है, ज स्वानुभाव अनुभवी ग्रंथ है, ज स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम, अध्यात्मिक दीप सदृश है, अध्यात्मिक दीप सदृश श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है संसारिणाम करुणयाः। समस्या ये है, हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करते, श्रीमद् भागवत का श्रवण का ये फल है कि इसमें वैराग्य उत्पन्न कर दे। श्रीमद् भागवत श्रवण का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। किंतु वैराग्य बहुत कड़वा है, कोई पीना नहीं चाहते, सब मीठा मीठा पीना चाहते, खाना चाहते, वैराग्य कोई ग्रहण करना नहीं चाहते। जब तक जीवन में वैराग्य का उदय ना हो तब तक भगवत प्राप्ति मार्ग बहुत बहुत दूरी है, क्योंकि हम लोग राग में है, संसार में है, विषय भोगों में राग है, अनुराग में पहुंचना है, बीच की जो रास्ता है वैराग्य है। ये वैराग्य आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, न तो वह आपको भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ये वैराग्य के लिए पांच चीज की धारण करना पड़ेगा। एक है निर्जन, निसंग, निरुद्वेग, निराभिमान और निरपेक्ष, एकांत में रहना, रहने की अभ्यास। हाँ, कुछ समय, जैसे जितना समय मिले एकांत की अभ्यास, निर्जन, निसंग, बहुत व्यवहार, व्यवहार को समेटना है, व्यवहार को फैलाना नहीं। हाँ, निर्जन, निसंग, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, जैसे जो भी मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। निरपेक्ष, निराभिमान, वैष्णव सबसे दैनता धारण करते, उस पुरुषेर कीट होते मुई से लघिष्ट, मोर नाम सुने जाए तार पाप है, मोर नाम लय जाए तार पाप छय। कृष्णदास कबीर गोस्वामी लिखते हैं, अपना दैनता व्यक्त करते हैं, मैं कैसे हो, मैं विष्ठा के कीड़ा हो, मेरे जो नाम लेते हैं उसका सब पाप छीन हो जाता है। हाँ, अपने का दैन्यता प्रकट करते हैं, ये है वैष्णव, वैष्णव निराभिमान, हाँ निराभिमान, और किसी को उद्वेग प्रदान नहीं करते। वैष्णव किसी को उद्वेग ग्रहण ले लेते, कोई उद्वेग दिया उसको स्वीकार स्वीकार है, किंतु किसी को उद्वेग प्रदान नहीं करते, ये है वैष्णव। तो वैराग्य के दिव्य ग्रंथ जस्मिन वैश्रिय मानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, जिस ग्रंथ को श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाए और शोक मोह भय दूरीभूत हो जाए, ये है श्रीमद् भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवत श्रवण की बहुत महिमा है। कोई अगर निष्ठा से श्रवण करे, इस श्रवण भक्ति से ही वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। किंतु हम लोग प्रमाद करते हैं, हाँ, प्रमाद से चल रहे हैं, इसलिए कोई फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रमाद के कारण सब समाप्त हो जाता है। तो ये दिव्य, ये जो भवाटवी का वर्णन चल रहा है, ये है रूपक का वर्णन। एक रूपक वर्णन कर रहे हैं भवाटवी का, जे व्यापारी लोग क्या करते, अर्थ प्राप्ति के लिए वन में जाते, जंगलों में जाते, घूमते 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 अर्थ प्राप्ति की इतनी तृष्णा है, वो प्राप्ति के लिए घोर जंगल में पहुंच जाते, घोर जंगल में जीवन की बाजी लगा देते। हाँ, जीवन की परवाह नहीं करते, मुझे धन चाहिए। इसी प्रकार जीव क्या करते, प्रवृत्ति मार्ग में घुसकर भवाटवी को प्राप्त करते। एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो है ये भोगों की मार्ग, सभी जीव विषय का सेवन करते हैं, ऐसे नहीं कि भगवत भक्त विषय का सेवन नहीं करते हैं, सभी जीव विषय का सेवन करते, किंतु सांसारिक जीव विषय का सेवन करके भवाटवी को प्राप्त करते हैं। और भक्त जो भगवान के भक्त होते, वो पांच ज्ञानेंद्रिय और मन के सहित विषय का सेवन करते, किंतु भगवान को प्राप्ति कर लेते। लक्ष्य की लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसी कारण से वो विषय का सेवन करते, उनका लक्ष्य है संसार की प्राप्ति। तो यहाँ धन का जो भवाटवी को प्राप्त करते, संक्षेप में सुन लीजिए पूर्व का जो क्या इतिहास है, भवाटवी क्या क्या वर्णन हो चुका है। तो भवाटवी को प्राप्त करते जीव प्रवृत्ति मार्ग में घुस करके कहाँ जाते, भवाटवी को प्राप्त करते, और इसी के चलते वो भगवत भक्ति लाभ नहीं कर पाते। प्रवृत्ति मार्ग में घुसने से वो भगवत भक्ति लाभ नहीं कर पाते हैं। ये छह इंद्रिया और मन, ये जो इंद्रिया है छह इंद्रिया, ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए संसार की अनुभूति कराते, किंतु निवृत्ति मार्ग के लिए ये भगवत की प्राप्ति कराते हैं। श्रीमद् भागवतम उसी को समाज में ज़्यादा अच्छा आएगा जो भजन करते हैं। बिना भजन से भागवत समाज में पालना नहीं पड़ेगा, इसलिए खूब से खूब, हाँ, निष्ठा से भजन करें तो इसका समाज में आएगा। तो प्रवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में घुस कर, निवृत्ति मार्ग में जो है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो ये जो इंद्रिया है ये दस्यु के समान है, इंद्रिय जो गण है ये सब दस्यु के समान है। ये क्या करते हैं, ये जो पुरुष के जो धन है, पारमार्थिक धन है, परम धन है, परम धन की सवई पुंसंग परो धर्म जतो भक्ति रधोक सजे, जो परम पुरुष में जो भक्ति है, ये भक्ति को दस्यु लोग छीन लेते, छीनने के कारण वो शून्य हो जाते हैं, उसमें कुछ दम नहीं रह जाते। तो इसी प्रकार छह इंद्रिया जो दस्यु है, ये प्रवृत्ति मार्ग का जो वालों का जो परम धन, भागवत आराधना रूप जो परम धन है, इसको ये अपहरण कर लेते। भवाटवी में एक समस्या है, इसमें धन का, परम धन का अपहरण हो जाता है। कुटुम्बादी भेड़िया श्रीगाल के समान है, देखिए कितना कठोर बात लिखते हैं यहाँ। इसी के चलते किसी को दुख ना लग जाए, जो कुटुम्बादी सगे संबंधी है ये भेड़िया है, श्रीगाल के समान है। ये क्या करते हैं, जो कमाई वाला जो धन है, ये धन को ये चुरा लेते, हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, ये इतना मोह में जाल में फंसा देते वो भक्ति कर ही नहीं पाते। हाँ, तो इसीलिए फिर वो असत कर्म में सांसारिक विषय सत्य जीव असत कर्म करते हैं। हाँ, सांसारिक विषय सत्य जीव क्या करते, असत कर्म करते। असत कर्म करने के कारण इसका बहुत मतलब नरक की गति होती है। और ये जो ये मोहांध के कारण ये देख नहीं पा रहे हैं, इसका जो बहुत साक्षी है देख रहा है मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका देख नहीं पाते। जो महांध पुरुष है ये द्वादश साक्षी है भागवत में छठा स्कंद में, जो हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं इसका सब साक्षी आपको कैमरा के सहित फोटो के सहित आपको दिखाई दिया जाएगा कि देखिए आपने क्या क्या काम किया आपने इस जगत में आकर। हाँ, तो इसी पर 12 साक्षी है, ये साक्षी आपको प्रदान करें, किंतु महांध के कारण ये सब देख नहीं पाते। तो उसके बाद सगे संबंधियों का धन का भी अपहरण कर लेते, अपना जीवन निर्वाह के लिए सगे संबंधियों को मार करके उनसे भी धन छीन लेते। ये गृहशक्त शक्त जीव बहुत खतरनाक है। हाँ, गृहशक्त के कारण ये अपने सारथी बन जाते, ये किसी को भी मारने में संकोच नहीं करते। फिर आज का श्लोक है, ये जो गृह है ये गृह दावानल के समान है। ये जो हम लोग संसार गृह जो वास कर रहे हैं ये गृह किसके समान, दावाग्नि के समान। जो हम यहाँ बैठे हैं सबका अनुभव है किस प्रकार से दावाग्नि से हम लोग जल रहे हैं। जो हम लोग भक्ति से पहले जो जीवन बिताया तो उसका निश्चित अनुभव होगा किस प्रकार से हम लोग संसार त्रिताप से कितना दुखी थे। हाँ, तो दावा नल से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, संसार दावा नल इड़ लोक, संसार कैसे है दावा नल के समान है। संसार दावा नल इड़ लोक, ये जगत संसार में सभी लोग संसार की दावाग्नि से निगल जा रहे हैं। संसार दावा नला लीड़, लीड़ मने मुख में चले गए। संसार दावा नला लीढ़ लोक, ये जगत संसार के सभी जीव संसार के दावा नल के मुख में, किंतु त्रणाय कारण घना घनत्तम प्राप्त से यहाँ तक। हाँ, त्रणाय कारण त्राण करने के लिए घना घनत्तम, घना घनत्तम तरणाय कारण घना घनत्तम प्राप्त। दो विशेषण गुरु का, दो विशेषण है भाई, कौन गुरु इस ये जो दावाग्नि के मुख में पड़ गया कौन इसको उद्धार कर सकते, जिसके हृदय में करुणा की वारी है, हृदय में करुणा की वारी है, करुणा घना घनत्तम प्राप्त और कल्याण प्राप्त कल्याण प्राप्त कल्याण गुणार नवश्य, दो सृष्टि है ना, ऐसे गुरु हो चरणों में मैं वंदना करता हूँ। कौन गुरु, जो करुणा के बारी जिसके हृदय में कैसे जीव की उद्धार हो कैसे जीव की कल्याण हो, इसके लिए ये दोनों को उद्धार के लिए ये दोनों कारण से जीव पर कृपा करते हैं। एक करुणा का बारी होना चाहिए और एक कल्याण की दृष्टि होनी चाहिए, तब कोई जीव पर जीव के कल्याण उद्धार कर सकते। संसार एक बार शिल प्रभुपाद विदेश में थे, शिल प्रभुपाद विदेश में, वो प्रभुपाद जी जब रहते थे पूरा एम्बेसडर माने एकदम राजदूत, हाँ बहुत आईएएस में रहते, बहुत जैसे लगते कोई राजा प्रधानमंत्री ऐसे नहीं रहते, इतना सुखपूर्वक रहते। जो नया नया गाड़ी निकालते रोज नया नया गाड़ी से प्रभुपाद चढ़ते। एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी आप तो साधु है, आप ऐसे अमीर व्यक्ति इतना भोग भोग नहीं सकते जितना आप भोग भोगते, कैसे रोज नया नया गाड़ी में चढ़ते, जो कीमती कीमती गाड़ी है उसी में रोज आप पहले चढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दे जान दे, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब बहुत तुच्छ है हमारे लिए, हमको तो रॉकेट चाहिए। सारे संसार के जीव कितना तेजी से नरक की ओर जा रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए मुझे रॉकेट की जरूरत है। हाँ, ये तो थर्ड क्लास की चीज मुझे, मैं देख रहा हूँ। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी के मन में करुणा की भावना थी, हाँ कल्याण की भावना थी, सारा संसार को कैसे नहीं तो देखिए आप श्रील प्रभुपाद जी जीवन में कितना स्ट्रगल किया, श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, हर स्टेप में अपमान तिरस्कार लांछना इसका क्रॉस करके श्रील प्रभुपाद आगे बढ़े, कभी प्रभुपाद रुके नहीं है, हैं यही श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता। हाँ श्रील प्रभुपाद कहीं पे बहुत स्ट्रगल के जीवन में, ऐसे आज हम लोग इतने एसी में घूम रहे, इतने एसी कमरा में बैठ के कथा श्रवण कर रहे, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के विशेष दान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी रोज खूब बनना, श्रील प्रभुपाद जिस उम्र में लोग बिस्तर पे बैठकर सोचते रहते हैं हम मैंने जीवन में क्या किया, मरने की इंतजार करते कब हमारा शरीर छूटेगा, श्रील प्रभुपाद उसी समय उस अवस्था में प्रभुपाद जी विदेश में गए और सारा विश्व में कृष्ण भावनामृत प्रचार किए। आज यदि श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत प्रचार नहीं किए होते आप सोचिए दुनिया का क्या अवस्था हो जाता, आज राइड शुरू हो जाता दुनिया में, एक दूसरे खाने मतलब एकदम बिल्कुल एक देश दूसरे देश के पीछे पड़ जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए, उसको ध्वंस करने के लिए, किंतु श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत रक्षा किया। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए श्रील प्रभुपाद जी अगर कृष्ण भावनामृत के दान नहीं किए होते तो आज संसार में आग लग गया होता। हाँ तो श्रील प्रभुपाद जी ये दावान को देखते थे, विश्वनाथ चतुर्पाद इसलिए लिखे संसार दावा नल लीड़ लोगों का, ये संसार दावानल के समान है, सबसे आग जल रहे एक दूसरे को मारने की प्रयास कर रहे हैं, हाँ एक दूसरे के छीनने के उसके डाउन करने की प्रयास में है, दूसरे के दुख देखने में जीव का प्रसंग आनंद मिलता है, यही तो संसार है। हाँ संसार में यही है कि जहाँ लोगों को सुख देखने से दुख हो और दुख दूसरे को दुख कैसे दिया जाए ऐसे प्रयास चलता रहता है यहाँ, इसी का नाम संसार। हाँ तो इस संसार भवाटवे में जब जीव गिर जाता है उसको कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे उसको उद्धार किया जाए, यही महत्पुरुष का स्वभाव। हाँ यही है महत्पुरुष का हृदय की भाव, इसलिए करुणा और कल्याण के गुणनिधि जो सुगुरुदेव उसके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हो। श्रील प्रभुपाद जी एक विशेष दृष्टांत। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आप देखिए गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में क्या क्या नहीं किया। हाँ सारे सब सेवा करने के लिए तैयार थे, कुछ भी सेवा गुरु ने स्वीकार नहीं किया, फिर अंतिम में जो लोकनाथ गोस्वामी सोच क्रिया के लिए जाते थे जहाँ वहाँ भी साफ करने लगे, हाँ फिर भी एक साल तक साफ कोई कौन करके जाते लोकनाथ गोस्वामी पता नहीं था, लेकिन एक साल के बाद पता चला कि कौन करते, छिप करके देखे झाड़ी से, कोई देखे कि बालक आ रहे रोज साफ करके जाते, ए क्यों करते, नम्र भाव से आपकी कृपा चाहिए। हाँ छोटी सी सेवा करने के लिए तैयार, भगवान के जो भक्त भक्ति प्राप्ति करना चाहते उस हमेशा दैनता उनके हृदय में दैनता के मूर्त प्रतीक होते हैं भक्त। तो इस प्रकार से आप देखते हम लोग ये जो भवाटवी का जो वर्णन है इसमें मुख्य है वैराग्य उत्पन्न करना। हाँ जो हम जीव सारे संसार के जीव जब राग के चपेट में है इससे निकलने के लिए असंग शस्त्रे ने दृढ़े न चित्ता, असंग शस्त्रे ने दृढ़े न चित्ता, असंग रूप शस्त्र के द्वारा ये जो भव बंधन है भवाटवी का बंधन को काटना पड़ेगा, बिना काटे आप नहीं चल सकते आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए संकल्प पूर्वक कुछ समय भजन करने की जरूरत है। दो बड़े बड़े संकल्प नहीं, दो दिन तीन दिन के संकल्प नहीं, मौन रहेंगे बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अपना जितना हो सके किसी का दर्शन नहीं करेंगे, इस प्रकार से छोटा छोटा संकल्प लेकर भजन मार्ग में आगे चलना पड़ेगा, तब जाके भजन पुष्ट होगा। हाँ बिना भजन किए कोई भवाटवी का पार नहीं कर पाएंगे, भजन बिना ना है प्रेम, सत्संग बिनु भजन ना होए, भजन बिना ना है प्रेम, भजन के बिना कोई प्राप्त प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब भजन प्राप्त होता है सत्संग से, बिना सत्संग से कोई भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कुएं है, कुएं में कोई गिर गया, वो अकेला उठ नहीं सकते वहां से, वहां से वो ऊपर आ नहीं सकते जब तक कोई दूसरे सहायता ना करे। हाँ, ये सहायता करने से, सहायता से वो आगे आ जाएंगे। इसी प्रकार से भवाटवी से जो जीव जल रहे हैं, इससे निकलने के लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु से आचार्य मंग बीजानियत, अगर गुरु कौन है, आचार्य मंग बीजानियत नाभमन्यत कहरिचित, हाँ, न मर्त बुद्ध से तो सर्वदेव मयो गुरु। गुरु है आचार्य के समान, गुरु है आचार्य के समान, कुछ कभी भी उसको मनुष्य ज्ञान नहीं करे। हाँ, न मर्त बुद्ध से तो सर्वदेव मयो गुरु, प्रभु श्री कृष्ण ही साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र, हरि ही साक्षात हरि ही समस्तेन समस्त शास्त्र उक्त। हाँ, साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र रुक्त स्तथा भावतैव सद्भि, किन्तु प्रभोर जा प्रियैव तस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। हरि ही साक्षात हरि ही गुरु के रूप में आते जीव के कल्याण के लिए। भवाटवी से जो जीव गिरा हुआ है उसको उद्धार करने के लिए साक्षात हरि ही आते। इसलिए जो हम दीक्षा ग्रहण करते हमें से कृतज्ञ रहना चाहिए, गुरुदेव मुझे जो अपना प्राण धन नाम धन मुझे प्राप्त दिया इसके लिए मैं कितना, हमें से कृतज्ञ व्यक्त करना चाहिए। कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए मुझे क्या दिया, अरे गुरुजी अपना धन जीवन धन आपको प्रदान कर दिया, आप उसके लिए कभी उऋण नहीं हो सकते। हाँ, इसलिए कभी गुरु के प्रति देश भावना, कभी उसकी उपेक्षा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, गुरु अपराध, कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रोज गुरु वंदना, गुरु से कैसे प्रेम प्राप्त हो, गुरु की कैसे भक्ति प्राप्त हो। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम, श्री गुरु चरण कमल भक्ति के आश्रय है। बिना गुरु सेवन किए, बिना गुरु कृपा कोई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते कि संसार दावा नन लीड़क त्रणाय कारुण्य घना घनत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारवि। श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते कि आदव गुरु चरणाश्रय, पहले गुरु के आश्रम में जाओ, गुरु के आश्रय में जाते ही तुम्हारा दिशा खुल जाएगा किस दिशा में चलना है। जब तक गुरु आश्रय नहीं होगा तब तक भक्ति के रास्ता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम साधना कर सकते, कहीं से मंत्र ले सकते, किंतु हम दिशा नहीं पाएंगे किस दिशा में चलना है। जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक दिशा मिलेगा नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत कृपालु कि आज ना जाने कितने लाखों कितने अरबों लोगों को आज प्रभुपाद जी कृपा से भगवान नाम मिल रहा है और कितना जीव सुखी है। मैं अपना जीवन के अनुभव सुनाता हूँ। अनुभव ये है कि जिस समय मैं छोटी अवस्था में आए थे, मैंने इतने समय व्यतीत होने पर भी मुझे ये नहीं लग रहा है कब ये समय चला गया, कभी कोई वेदना भी ज़्यादा सताया नहीं। किस प्रकार से भक्ति करने से जो वासना, ये वासना को व्यतीत नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं करते, अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम। हाँ, अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध तृषात अवगाढ़ न सस्मार दावम निष्क्रामति न ब्रह्मन ब्रह्म संपन्न वतन। अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम, जब यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ नष्ट कर दिया भगवान शिव ने, पूरा सबको तहस नहस कर दिया, तो उसी समय ये आए, उसी समय भगवान शिव को, भगवान शिव की सब स्तुति करने लगे कि प्रभु मैंने भगवान के, भगवान ही है कृष्ण, ब्रह्मा शिव और कृष्ण, तीनों में जो भेद देखता है वो भगवान श्री कृष्ण कहते वो मुझसे देश करता है, तीनों में कभी भेद ना देखे। तो भगवान शिव की जब स्तुति करने लगे, स्तुति करते समय सिद्धों ने प्रार्थना की, अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्या, हे प्रभु आप ही कथा सरिता में गोता लगाने से हमारे जो मन रूप हाथी दावानल से दग्ध था, दावानल से क्लेशित था, क्लेशित क्लेश रूप दावानल जिस दग्धिवती हो रहा था वो आज शांत हो गया। क्यों? त्रिषात अवगाढ़ न सस्मर दारम दावम, वो दावा को स्मरण नहीं कर पा करते हैं, क्योंकि त्रिषात अवगाढ़ उसमें गोता लगाए बैठे हैं। अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्यम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध, मन रूप जो हाथी हमारा क्लेश रूप अग्नि से दग्धीभूत था वो आज शांत हो गया, क्योंकि अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्यम आपकी कथा सरिता में एक गोता लगाया। जैसे दोनों तरफ नदी के दोनों तरफ आग लग गया, दोनों तरफ जंगलों में आग लग गया और बीच में नदी ठंडा प्रवाहित हो रही, नदी जल प्रवाहित हो रहे, उसी में कोई अगर घुस जाए कोई हाथी वो बाहर निकलने निकलेगा नहीं, क्योंकि उसकी शीतलता प्राप्त हो रही है। कोई हाथी अगर नदी में घुस जाए और दोनों तरफ आग लग गया, दोनों तरफ जंगल के आग लग गया और हाथी उसमें प्रवेश कर गया, हाथी कभी वहाँ से निकलेगा नहीं, कारण क्योंकि आग लगा हुआ है। इसी प्रकार जो कथा सरिता में जो घुस जाएंगे वो आर वहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि संसार के दाब को उसको पता है, संसार में जाने से मैं मेरा शरीर जल जाएगा, इसीलिए वहाँ से वो निकलना नहीं चाहते। हाँ, इसीलिए अयम तत् कथामृष्ट पीयूष नद्यम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध त्रिषात अवगाढ़ न सस्मार दावम, वो दावा दावानल को स्मरण भी नहीं कर पाते, कब चला गया समय, कब दिन चला गया, हाँ उसका स्मरण भी नहीं होता, क्योंकि निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वत न, क्योंकि उस ब्रह्म संपन्न वत हो चुके। तो इसी प्रकार भवाटोवी का वर्णन हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि इंद्रिया दस्यु के समान है, क्योंकि इंद्रिया के एक एक वृत्ति हमारे जो वृत्ति के चुरा लेते हैं, जैसे हमारा मन, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में लिखते हैं वाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम, इसको पहले जीतो, पहले वाक्यों के वेग जीतो, ज़्यादा बातें ना करें। हाँ, ज़्यादा बात करने से क्या है, एक तीन नुकसान है, एक सब बात नहीं करने से तीन चीज से आप बच जाएंगे, जैसे झूठ से आप बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, हाँ समय से बच जाएंगे, और एक चीज़ आपको प्राप्त होगा कि वाणी में दिव्यता आ जाएगी, वाणी में दिव्यता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अधिक से अधिक बातें ना करें, जितना कम से काम चल जाए, कोई वार्ता करे तो उसे दूरी बना कर रखे। हाँ, इसलिए वाच वेगम मन वेगम, मन का दमन करने का सरल उपाय है कथा सरिता में इसमें रस लगाना। हाँ, जिसको मन को मार लिया वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति में मन की जिंदा की बात नहीं है, मन को जिंदा रखना नहीं, जितना मन जिंदा रहेगा जीवित रहेगा उतना सताएगा। हाँ, इसलिए एक कथा आती है कि शिष्य गुरु के पास गए और कहे कि गुरुदेव, हाँ ये मन रूप जो भूत है हमको बहुत सताते, हमको एक जगह बैठ के भजन करने नहीं देते, बोले भूत को एक काम करो, एक भूत को एक जो जो भूत है, ये भूत को क्या करो, एक बांस है, बांस को बेम्बू को गाड़ दो और उसमें भूत को कहो कि तुम ऊपर नीच करते रहो, वो भूत करते जब, और भूत का ऐसे माने उनका ऐसे लोग माने बोल के रखा था, जब मुझे कोई काम नहीं देंगे मैं आपको खा जाएंगे, अगर मुझे कोई काम नहीं देंगे कोई सेवा नहीं देंगे मैं आपको खा जाएंगे। तो शिष्य डर के गुरु के पास आए, गुरुदेव मैं क्या करूँ, इसको मैं काम नहीं देंगे तो ये मुझे खा जाएंगे, तो कहो कि भूत से कि जो बेम्बू गड़ा हुआ है इसमें ऊपर नीच उठते नीचे करते रहो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप उठते नीचे। इसी प्रकार मन रूप जो हमारा भूत है इसको रात दिन प्रभु का नाम स्मरण कराना है, जब तक माँ ऐसे तरह नहीं करेंगे हमको ये विविध रकम विषय वासना में फेंक देंगे। ये जो कामना बहुत सूक्ष्म रूप में आते हैं, धीरे धीरे से समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो माँ ये जो कामना जो है मन में जो कामना बसा हुआ है, ये कामना पहले सूक्ष्म रूप में आता है, फिर धीरे धीरे में ये समुद्रवत समुद्र का रूप ले लेते हैं। इसलिए पहले से इसको रोकना पड़ेगा, न तो वह इसको आप जीत नहीं पाएंगे। तो मनोवारणा वाच वेगम मनस्थ क्रोध, क्रोध की वेग, एक बार क्रोध कर ले तो एक महीना की भजन चला जाता है। हाँ, कभी क्रोध आ जाए तो उस दिन उसको दंड देना चाहिए कि क्रोध क्यों किया, आज आपको भोजन नहीं देंगे, आज आपको इतना माला अधिक करना पड़ेगा। जब तक दंड नहीं देंगे तब तक आप क्रोध से बाँच नहीं पाए। कोई भी इंद्रिय अगर गलती करे उसको दंडित जरूर देना चाहिए, दंड देना चाहिए। हाँ, कोई इधर उधर मन गया, आँख गया, दृष्टि गया, तो उसको अवश्य दंडित करना चाहिए। दंडित करने से धीरे धीरे उसमें वो माने उस लक्ष्य से हट जाएंगे। फिर धीरे धीरे से मानस क्रोधो वेग, जिह्वा वेग, जिह्वा का वेग कि भी भागवत में आया, जो रसनाम जयत स सर्वम जीत, रसम जीत सर्वम जीत, जो रसना को जीत लिया उस सब कुछ जीत लिया। हाँ, भोजन से हमेशा बचे, भोजन भजन को पूरा खा जाते हैं। हाँ, कहीं पे मिल जाए बैठ के नहीं खाना चाहिए, बहुत विचार विमर्श करके खाना चाहिए। हाँ, एक बार पूरा 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 कोई किसी घर में पूरा खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही किसी प्रकार जीवन रक्षा हो जाए। हाँ, किसी घर में गया भंडार बुलाया और जम कर खा लिए, आपका भजन समाप्त हो जाए। अगर कि भूख से अधिक जितना भूख है उत्ना भोजन करे तो इसको सात्विक भोजन माना गया, और भूख से अधिक थोड़ा सा अधिक पा लिया तो उसको राजस्विक भोजन कहा गया, और उससे भी अधिक जिससे आपको विस्तार में जाना पड़ेगा तो तमोगुण की भोजन, भारी प्रसाद क्यों ना हो। हाँ, उसमें आपको अगर विस्तार के सहार लेना पड़े तो आपको उसको तामसिक भोजन कहा जाएगा। इसलिए भोजन भी बहुत सावधानी से, हाँ, जिससे भोजन भजन बने इतना ही भोजन की जरूरत है। फिर इस प्रकार से अगर जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उदर का वेग उपस्थ का वेग, जब तक मैं इस वेग का दमन नहीं करेंगे हम भवाटवी के पार नहीं कर पाएंगे। भवाटवी के पार करने के लिए इस वेग की वेग को जरूर वेग वेग को सहन करना पड़ेगा। हाँ, वेग आया पहले वेग बहुत जब बड़ा रूप से आता है फिर धीरे सहन करते करते छोटा रूप ले लेते हैं। कोई वेग आया पहले बड़ा रूप से आएगा, मुझे भूख लगी है, जोर की भूख लगी है, थोड़ा सहन कर गया फिर आपको और सताएगा नहीं, फिर धीरे धीरे से वो शांत हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद आप भोजन कर सकते हैं। हाँ, जब तक शासन नहीं करेंगे ये आपको नाचाएगा, आपको भजन करने नहीं देंगे। आप हमेशा कहीं पर कुछ भोजन मिल जाए पशुवत नहीं खाया करें, वो सोच विचार के कि हमारा भजन ना चला जाए। हाँ, बहुत सावधानी, बहुत चिंता, बहुत कुछ आगे चिंता करके भोजन की स्वीकार करना चाहिए। तो काल बहुत अच्छा दिन है, अब जानते काल क्या दिन है, काल देव स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा कल देव स्नान पूर्णिमा कहा गया जगन्नाथ स्वामी की, कल बहुत पुनीत पवित्र तिथि है। कल इस तिथि में सब हम लोग भाग लेंगे। हाँ, क्योंकि इसको जन्मदिन कहा गया, स्नान यात्रा को जगन्नाथ जी का जन्मदिन कहा गया। किसी मंदिर में किसी देवालय में जाए, जैसे हम राधा रमन जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, कोई भी किसी मंदिर में गए, हमारे जो इष्ट है इष्टों को ही उसी रूप में दर्शन करना। मैं कहीं गया जगन्नाथ जी में दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी गया, हमारा इष्ट ठाकुर जी, इष्ट ठाकुर जी है, तो वो इष्ट को ही, क्योंकि नहीं तो आपका इष्ट खंडन हो जाएगा। जो हमारा अनन्यता जो है, हमारा जो अनन्यता भाव है, अनन्यता जो लक्ष्य है, अनन्यता खंडन कि हम कहीं पे जाए हम हमारा इष्ट को ही दर्शन करेंगे। भाई जगन्नाथ जी जाए और कहीं पे जाए, हमारे जो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे द्विभुज मुरली श्याम सुंदर रूप में, कभी जगन्नाथ रूप में नहीं, उनका इष्ट था द्विभुज मुरली श्याम सुंदर महाप्रभु का, तो उसी रूप में प्रभु का दर्शन करते थे। तो काल जगन्नाथ जी की लीला तो आप लोग कल बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक दो शब्दों में कि एक ब्राह्मण आए थे पुरी में, जब वो जो लील माधव जो एक दारू ब्रह्म के रूप में जो नदी में प्रवाहित हो रहे थे, तो सपना देश हुआ राजन इस लकड़ी को उठा ले और इसमें मूर्ति बनाए और उसी को स्थापना करें। राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी को लाए, उस लकड़ी को लाकर एक ब्राह्मण को सौंप दिया। एक ब्राह्मण कहे कि मैं 21 दिन में सुंदर विग्रह बना देंगे, तो एक दरवाजा कभी ना खुले, इस दरवाजा 21 दिन के बाद ही खुला जाएगा। जब 13 दिन 14 दिन हो गया तो बोले कि मैं कैसे जानूं कि आप जीवित है कि आप है कि नहीं है। बोले आपको आपको ही एकमात्र आवाज सुनाई देंगे, जो काम चल रहे जो अंदर कुछ चल रहे तो आपको सुनाई पड़ेगा। तो 14 दिन जब 13-14 दिन हो गया तो कुछ सुनाई आवाज भीतर से नहीं आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, 14 दिन अपेक्षा किया, 15 दिन हुआ, 16 का दिन, 16 दिन जो है उसी दिन उन्होंने गुंडीचे महारानी के कि ब्राह्मण मर जाएगा कि आपको उसमें पाप लगेगा, ये कोई ब्राह्मण आया बाहर से पुण्य करने के लिए और ऐसे ही पूरी धाम में इसका मौत हो जाए, पाप किसको लगेगा, हे राजन आप खोल दीजिए जो भी हो देखा जाएगा, हाँ क्या अंदर क्या है कि अभी जीवित है कि नहीं है, पहले खुली है। तो 14 दिन में जब 16 दिन में जब खोल दिया, देखे अरे प्रभु का पूरा हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं है, ये कैसे, उन्होंने बहुत विकल है, बहुत व्यथित हुए, अरे मैंने इसी रूप में प्रभु का दर्शन, अरे आज थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो ठीक हो जाते, उसमें रंग अंगराग हो गया था, महा कृष्ण का काला रंग, बलदेव प्रभु का सफेद रंग, सुभद्रा महारानी का पीला रंग, ये सब रंग हो गया। तो बोले कि मैं आत्महत्या कर लेंगे, राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं, मैं अपना जीवन उत्सर्ग कर देंगे। तो भगवान जगन्नाथ देव जी कहें कि नहीं, मैं कोली में इसी रूप में दर्शन देंगे, कोली युग में मैं इसी रूप में हमारा दर्शन होगा, जगतवासी मुझे इसी रूप में देखेंगे। तो राजा इंद्रदुम्न ने बहुत प्रसन्न हुए, प्रभु की स्थापना किए। तो स्थापना से पहले मंदिर बनवाया, हाँ कल आप लोग बहुत अच्छा से सुनेंगे, और फिर ब्रह्मा जी आएंगे मंदिर स्थापना करेंगे, फिर पहले स्नान की, प्रभु की स्नान पूर्णिमा जो है कि सब देवलोक गंधर्व लोक किन्नर लोक सभी लोक लोका लोकपाल सब आकर प्रभु को अच्छा से नहाएंगे, अच्छा स्नान कराएंगे, दूध दही घी मधु सब भर भर करके कल ले जाएंगे, खाली हाथ में मत जाइए पूरा एकदम, क्योंकि प्रभु की स्नान यात्रा है। हाँ पूरी में तो सिल्वर के पात्र में प्रभु के स्नान कराए जाते हैं बहुत सुंदर सुगंधित पदार्थों से, इसी प्रकार आप लोग भी काल भक्ति से कि हमारे प्रभु की जो हमारा इष्ट है वही प्रभु आज इसी रूप में दर्शन दे रहा है, आज मैं उसी का ही अपना हाथ से स्नान, आज देखिए कलियुग भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु आज कितना करुणामय विग्रह है, कितना प्रेममय विग्रह है, कोई भी चंडाल कोई भी मतलब लेच्छ कोई भी जाकर काल उनका स्पर्श कर सकते, काल उनका दर्शन कर सकते, ऐसे कभी दो दिन मात्र साल में दो दिन दर्शन देते, ऐसे बाहर कोई भी स्पर्श कर सकते, एक स्नान यात्रा और एक रथ यात्रा, और कोई ऐसे सुयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। तो काल अवश्य जरूर आएगा, और जो माता यहाँ ब्रज में निवास कर रहे हैं वास कर रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा पदार्थ बना के लाइएगा, हाँ जितना हो सके, हाँ क्योंकि जब आप लोग सुनेंगे जो कृष्ण बलराम आए थे ना गोचरण के लिए, हाँ कृष्ण बलराम कहे कि हमारे बहुत भूख लगा, हाँ ग्वाल वालों से कहे कि जाइए ब्राह्मण पत्नियों से कुछ मांग के लाए, ब्राह्मण देवता नहीं दिए, फिर दोबारा ब्राह्मण से गए, ब्राह्मण से जब प्रार्थना किए तो ब्राह्मण ने बहुत दौड़ कर आए और कहे कि नहीं नहीं काम नहीं देना, हम बहुत गोपाल गोपाल बालक है, प्रभु के बहुत सखाए हैं, सब भूखे हैं, सबके लिए लाइएगा, और सबके लिए लाए और बहुत सबको बहुत खिलाया। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा इसी प्रकार करे कि वहाँ कोई भी जाए कल बहुत अच्छा सबको प्रसाद प्राप्त हो। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, उनका सबसे बड़ा भोग लगता है, पूरी में तो 56 भोग हर बार 56 भोग लगता है, हाँ तो जगन्नाथ साहब बहुत कृपाल हुए, बहुत माने जो भी काल आपकी मनोकामना की ब्रजवास मिले हमारा नाम अच्छा से नाम में रुचि मिले, तो काल जो भी कुछ अच्छा अच्छा प्रार्थना करे, जो भौतिक कामना नहीं, कामना होनी चाहिए परमार्थिक कामना। हे प्रभु ब्रज से कभी बाहर जाना ना पड़े, हे प्रभु कभी जीवा से नाम छूटे ना कभी, हे प्रभु हृदय से निरंतर ध्यान बना रहे, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रार्थना अवश्य करें और काल जगन्नाथ जी का आनंद का भाग ले। जितना हो सके दूध दही घी मधु जिसका जैसे सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के अनुसार लाइएगा, भोग बना के लाइए। ठाकुर जी का काल खूब हाँ हृदय से हृदय लगाकर, हे प्रभु कब मुझे इस प्रकार अवसर मिले कि फिर दोबारा स्नान करने का, हाँ इस प्रकार से आप लोग खूब नहा ये करें, कल आनंद लें। कल सभी भरी संख्या में जो लोग नहीं आए जो ऑनलाइन में सुन रहे, कल खूब जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा में भाग लें और सब खूब आनंद लें। जय जगन्नाथ स्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।